ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एवं निर्जेत षड्वर्गः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती दया संलभ्यते रतिः। एवं इस प्रकार निर्जत दमन किया गया षट वर्ग इंद्रियों के छह लक्षणों काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मत्सर से क्रियते की जाती है भक्ति भक्ति ईश्वरे परम नियंता में वासुदेवे भगवान वासुदेव में भगवती भगवान यया जिससे संलभ्यते प्राप्त की जाती है रते आसक्ति। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की पीछे द्वारा ये इन उपर्युक्त कार्यकलापों द्वारा मनुष्य शत्रुओं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को दमन करने में समर्थ होता है, पर ऐसा कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसा कि श्लोक 30-31 में उल्लेख किया जा चुका है कि मनुष्य का पहला काम है भगवान की सेवा प्रारंभ करने के लिए उनके प्रतिनिधि गुरु के पास पहुँचे। प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि छोटे बालक को कौमार आचरित प्राज्ञ प्रारंभ से ही गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करने की शिक्षा दी जाए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरुहितम। भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 1। यह आध्यात्मिक जीवन का सूत्रपात है। गुरु तथा शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए शिष्य भक्ति प्राप्त करता है और संपत्ति से अनासक्त हो जाता है। उसके पास जो कुछ होता है उसे वह अपने गुरु को अर्पित कर देता है, जो उसे श्रवणम कीर्तनम विष्णुओं में प्रवृत्त करता है और शिष्य दृढ़तापूर्वक आज्ञा पालन करके अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखता है। फिर अपनी शुद्ध बुद्धि का प्रयोग करके वह धीरे धीरे भगवान का प्रेमी बन जाता है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने पुष्ट किया है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग्रह। इस प्रकार मनुष्य जीवन पूर्ण बन जाता है और कृष्ण के प्रति उसकी आसक्ति प्रकट हो जाती है। इस अवस्था में वे आनंद को प्राप्त होता है और भाव तथा अनुभव की अनुभूति करता है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। जैसा कि श्लोक 30-31 में उल्लेख किया जा चुका है, तो 30-31 को पढ़ते हैं। मनुष्य को प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए, भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए, सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र और गुरु के आदेश अनुसार भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। यहाँ तीन बातों की चर्चा आ रही है। एक है कि आप किन कार्यकलापों के द्वारा अपने शत्रुओं का दमन करने में समर्थ होते हैं, व्हाट एक्टिविटीज यू हैव टू परफॉर्म, वही आपकी एलिजिबिलिटी बनती है भगवान की सेवा करने की। योग्यता है, भगवान की सेवा करनी है तो आपको इस योग्यता को प्राप्त करना। सेवा में चाहिए क्या? परफेक्शन। और परफेक्शन जो है वो तभी आती है जब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो। गाइडेंस चाहिए। मैं सोचूं कि मैं अपनी मर्जी से कार्य कर लूंगा और परफेक्ट हो जाऊंगा तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी कार्य करना है, सिंपल से सिंपल अगर भौतिक संसार के भी कार्य लें, अगर आपको सब्जी बनानी है घर के अंदर तो माता को पुत्री को सिखाना पड़ता है कि भाई इसको इस तरीके से बनाया जाएगा, अपने आप वो नहीं सीख पाती। देयर हैज टू बी सम कोचिंग, सम टीचिंग। तो अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, अब सेवा करने के दो तरीके, एक है अपनी मर्जी से करें, जैसे मेरा मन आएगा मैं वैसे करूंगा, एज पर माई चॉइस। परंतु यहां सेवा का अर्थ जो है उसको समझने की आवश्यकता है। एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करें। आईपीएल चल रहा है ना, खूब चौके छक्के लग रहे हैं, मैच है। लड़का जो है आराम से घर के अंदर सोफे पे बैठा हुआ, सामने दीवार पे टीवी लगा हुआ है, मैच का दर्शन कर रहा है, मैच देख रहा है। पिता घर में प्रवेश कर गए, सारा दिन धूप में घूमे हैं, थके हारे बुरे हाल हो रहे हैं, आके सोफे पे बैठ जाते। अब बेटे से कहते हैं कि बेटा बड़ा थक गया हूँ, जरा मेरी टांगें दबा। अब बेटा अगर टांगे दबाने के लिए आता है तो उसके चौके छक्के की तरफ पीठ हो जाती है तो गायब हो जाते हैं। हाँ, ये कैसे हो सकता? चुपचाप पिता के पीछे आगे खड़ा हो जाता है और कंधे दबाने शुरू कर देता, क्योंकि चौका छक्का मिस नहीं कर सकता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साल में एक बार होता है। पिता ने कहा, बेटा मेरी टांगे दर्द कर रही है, मेरी गर्दन से चला नहीं हूं, गर्दन से मैं चला नहीं हूं, गर्दन दर्द नहीं कर रही है मेरी, तो टांगे दर्द कर रही, इनको दबाओ ना। नहीं सुना, दबाता चला जा रहा है कंधे। फिर बोला, बेटा टांगे दबाओ, टांगे बहुत दर्द कर रही हैं, बस इनको थोड़ा दबाने की आवश्यकता है। पिताजी चुप रहिएगा, सेवा हो रही है ना, चुपचाप करवाते रहिए, बोलिए मत। मतलब सेवा मैं करूंगा अपनी मर्जी से। पिता कैसे चाहते हैं? सेवा करो मेरी मर्जी से। तो कौन सी सेवा बेटर है, पिता की रिक्वायरमेंट के अनुसार सेवा करनी या अपनी मर्जी से सेवा करनी? जो रिक्वायर्ड है उसी से तो प्रसन्न होंगे ना पिता। तो अगर भगवान की सेवा करनी है तो भगवान के जो रिक्वायरमेंट है, जो उनके नॉर्म्स हैं, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके अनुसार करनी है कि अपनी मर्जी से करनी है? पर वो टर्म्स एंड कंडीशंस कौन बताएगा? हु विल टेल? हु इज द गाइड? मैं तो ऐसे ही करता था, अभी तक तो मैं अंधेरे में था, मुझे ज्ञान ही नहीं था, अब यहां आया हूं ना तब पता है कि भगवान की सेवा कैसे होती है। अब मेरे को रोशनी हुई है, पहले तो मैं अंधेरे में था। तो अगर हमने भगवान की सेवा करनी है तो उस सेवा करने की योग्यता प्राप्त करनी। अब सेवा करने का लाभ क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज? हम कहें कि मैं सेवा में परफेक्शन चाहता हूं, सेवा में कोई कमी ना रहे, किसी प्रकार का कोई इफ किंतु लेकिन परंतु बट कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी सेवा परफेक्शन में होनी चाहिए, तो सेवा करने का फायदा क्या है? स्वार्थी जीव है, हर कार्य स्वार्थ के अनुरूप करते हैं, कोई काम ऐसा नहीं करते जो बिना स्वार्थ के हो। मुझे बताओ लाभ क्या है? एक व्यक्ति घर से चला, नॉट प्लेस जाना है, ऑप्शन आई थी वो डीटीसी की बस में बैठो और उसमें चले जाओ, दूसरे ने कहा नहीं नहीं मेट्रो में चले जाओ। तो पहला सवाल करता है कि ये बताओ मेट्रो में जाने का फायदा क्या है, टिकट तो बराबर है, तो 4-5-10 पैसे रुपए 2 रुपए का फर्क होगा, फायदा क्या है। बोला जल्दी पहुंच जाओगे, एसी मेट्रो है, डीटीसी की बस में धक्के खाते जगह जगह रुकते रुकाते जाएगी, 10 जगह ब्रेक मारेगी, इसलिए मेट्रो के अंदर जो है सुविधा है, मेट्रो में चले जाओ। स्वार्थ देखो, स्वार्थ में बात समझ में आ गई कि मुझे मेट्रो में जाना चाहिए, तो सीधा मेट्रो में चला गया, क्योंकि वो लोभी है, उसको स्वार्थ है कि मेरा फायदा किस में होगा। तो व्यक्ति पूछता है कि आपने कहा भगवान की सेवा करो, मान ली मैंने बात, मैं भगवान की सेवा करूंगा, पर क्यों करूं, व्हाई शुड आई डू इट, मेरा लाभ क्या है, ये फायदा है, या मैं जो सेवा कर रहा हूं इसके मुकाबले में जो आप सेवा की बता रहे हैं बात, वो सेवा करनी शुरू करूं तो उससे क्या लाभ है। मैं तो ऑलरेडी भगवान की सेवा में, भगवान को मानता हूं, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट कृष्णा भगवान है, ये नहीं मानता कृष्ण भगवान है, हाँ मैं भगवान मानता हूं, पर मुझे आप एक बताओ बात, आप कहते हो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, अरे भगवान तो हमको सब कुछ देने वाले हैं, तो हम उनको एक थाली दे देंगे तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता, एक थाली से प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जब प्रश्न निकल के आते हैं कि मैं तो भगवान की सेवा अपने तरीके से करता हूं, पर आप जो तरीका बता रहे हैं, जो एक योग्यता प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, उस योग्यता को प्राप्त करने का मेरे को लाभ क्या है, मैं अपने स्वार्थ के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता हूं, बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करता, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो यहां जो है इसका उत्तर दिया है इस श्लोक के अंदर, इस प्रकार वह भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। मुझे भगवान की प्रेमा भक्ति, अब प्रश्न ये आया कि भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा, सिंपल भाषा में कह लो सेवा, भगवान की सेवा। अब उसके पहले प्रेमा भक्ति लगाने की क्या जरूरत थी, जब भगवान की प्रेम में ही सेवा हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है, तो उसमें प्रेमा भक्ति की क्या आवश्यकता, कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त करता। व्हाट इज प्रेमा भक्ति, कि आप जिस तरीके से भक्ति कर रहे हैं क्या उससे आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा या नहीं होगा। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मेरा भाव है, पर क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो फायदा क्या है कि वो आप मुझसे प्रेम, भगवान मेरे से प्रेम करने लगे, मैं भगवान से प्रेम करता हूं पर भगवान मेरे से प्रेम करने लगे, इसका क्या लाभ है। फिर स्वार्थ आ गया, फिर फायदे की बात आ गई कि भगवान मेरे से प्रेम करने लगे तो इसका मेरे को लाभ क्या होने वाला है। सब कुछ दिया है भगवान ने मेरे को, घर दिया है, फार्म हाउस दिया है, गाड़ियां दी है, संतान दी है, सुंदर पत्नी दी है, मुझे सब कुछ अवेलेबल है, तो मैं भगवान को क्यों प्राप्त करूं। पर मान लो कि मेरे को आपकी बात समझ में आ रही है, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, या भगवान मेरे से प्रेम करें, मैं भगवान से प्रेम करूँ, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान मेरे से प्रेम कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या है कि मैं ये कहूँ कि भगवान मेरे से प्रेम करने लगे, अगर वो मेरे से प्रेम करने लगे तो उस प्रेम का मुझे क्या लाभ होने वाला है, मुझे क्या फायदा होने, मेरे को उस प्रेम से क्या लाभ होने वाला। फिर जब अगले श्लोक पढ़ेंगे तो चर्चा आएगी कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य 84 लाख योनियों का भोग भोगना है, या इन भोगों से बाहर निकलकर भगवान के धाम में प्रवेश कर जाना। तो भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका पुनर्वर्तनो अर्जुन मामुपेत्या तो कौनता है पुनर्जन्मना विद्यते। उच्चतम लोक ब्रह्मा जी का, निम्नतम लोक पाताल, सारे के सारे लोक दुखों के घर हैं। दुख क्या है? जन्म तथा मृत्यु का चक्र। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब वो लौटकर इस संसार में नहीं आता। कब नहीं आता? जब वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता। अब भगवान का प्रेम प्राप्त करने का फायदा क्या है? कि भगवान मुझसे प्रेम करने लगे, उसका लाभ जो है मेरे स्वार्थ के हेतु एक ही है कि जब भगवान मुझसे प्रेम करेंगे तो उनके घर का दरवाज़ा खुला रहेगा मेरे लिए। मृत्यु के बाद मेरा प्रवेश वहाँ पर निश्चित है, डेफिनेट, क्योंकि अब वो मुझसे प्रेम कर रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ मुझे अंदर ले लो, मैं बड़ा प्रेम करता हूँ मुझे अंदर ले लो, मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, चांस ही नहीं है, क्योंकि जब लोग से ही बाहर नहीं जा रहा, वहीं फंसा हुआ हूँ मैं तो, क्योंकि अभी शत्रुओं ने मुझे छोड़ा नहीं। परंतु जब भगवान मुझसे प्रेम करने लग जाएंगे, अर्थात जब मुझे दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी, तब मेरा भगवान के धाम में प्रवेश करने का रास्ता खुल जाएगा। अब उस रास्ते की बिगनिंग कहां से होती है? उस प्रेम, जो कृष्ण प्रेम है, जिसको मुझे प्राप्त करना है, जो मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया, मुझे बात समझ में आ गई है कि प्रेम प्राप्त करने के लिए मुझे सेवा करनी आवश्यक है। और सेवा कैसे करनी है? एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉर्ड। कृष्ण की जैसी इच्छा है, जैसी चाहत है, जैसी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अनुसार सेवा करनी है मुझे, अपनी मर्जी से नहीं करनी। अरे, भगवान ने भगवत गीता के अंदर 3rd अध्याय 31वें श्लोक में कहा है, जो ईर्ष्या रहित श्रद्धा पूर्वक होकर मेरे आदेशों का पालन करते हैं, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो मेरे धाम में आने के लिए क्या चाहिए? मेरे आदेश का पालन, नंबर एक, ईर्ष्या रहित होकर, नंबर दो, श्रद्धा पूर्वक, नंबर तीन। अगर ये कार्य कर लेते हैं तो कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो इसकी बिगिनिंग कहां से होती है? कि आप भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकें, उसका आरंभ कहां से होता है? आप घूम रहे हैं सड़क के ऊपर, मिलते हैं, एक प्रभु जी आए, उन्होंने गाड़ी का शीशा खुलवाया, एक भगवत गीता दे दी। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है। कौन सी है जी? वो दूसरी है। नहीं नहीं ये पढ़िए, एज इट इज, बिल्कुल यथार्थ भाव लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा बढ़िया किताब है ये, पढ़िए, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएंगी, आपकी चिंताएँ दूर हो जाएंगी। बहुत बढ़िया तरीके समझा, बहुत तरीके से कन्विंस करके उन्होंने उनको एक किताब दे दी। बड़ी मेहनत कर रहे हैं लड़के, शीशे खुलवा खुलवा के किताबें देते हैं, और बस समझाते भी हैं। कुछ दम होना चाहिए। आप कहाँ से हो? बोले मैं इस्कान पंजाबी बाग से हूँ। कहाँ है मंदिर? उस सड़क पे है। अच्छा, कभी जाएंगे, कभी जाएंगे। अभी जाने का मन पक्का नहीं है, परंतु कभी जाएंगे मन में विचार आ गया। एक दिन निकल रहे थे आगे से, देखा गहमा गहमी है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, समझ में आई बात, चलो आज मैं भी गाड़ी खड़ी करके अंदर आ जाता हूँ। तो अंदर आ गए। तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए बात हुई हो, चाहे हरि नाम करते हुए बात हुई हो, चाहे रथ यात्रा में बात हुई हो, चाहे किसी प्रीचिंग प्रोग्राम में बात हुई हो, या ऑफिस में, घर में, कहीं भी बात हुई हो, उसने एक रास्ता दिखाया कि आपको भगवान से जुड़ने का ये तरीका है, तो वो आपका प्रथम गुरु हो गया, फर्स्ट गुरु, वर्तम प्रदर्शक गुरु, अर्थात पथ प्रदर्शक गुरु। उसने आपको बताया कि भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए, भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो स्थान है, जहाँ दर्शन प्रसाद चरणामृत के अलावा और भी कार्य होते हैं, और कार्य हैं कि आपको भगवान से इंट्रोड्यूस करना, भगवान से आपका परिचय करा देना। यस, भगवान कौन है और भगवान को प्राप्त करने का लाभ क्या है, एक आइडिया, एक ज्ञान थोड़ा दिया। उसने भी डिटेल्स नहीं बताए, बिगनिंग करी है, बस बिगनिंग, थोड़ा सा आरंभ हुआ है। तो आपका हो गया वर्तम प्रदर्शक गुरु, जिसने आपको पथ प्रदर्शन किया है भगवान तक पहुंचने के लिए। अच्छा लगा, बड़े सुंदर विग्रह हैं, बड़े सुंदर दर्शन हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार है, साफ सफाई भी बड़ी है, और भक्त जो है बड़े प्रेम से वेलकम करते हैं, मुस्कुरा के हरे कृष्णा करते हैं, फिर आपका परिचय लेते हैं, फिर आपको थोड़ा ज्ञान देते हैं। हौले 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 आपकी अटैचमेंट जो है किसी भक्त के साथ हो गई, भक्त को आप अच्छे लगने लगे, आपको भक्त अच्छा लगने लगा, उसने आपका इंट्रोडक्शन एक क्लास से करा दिया। अब 6 सेशन कोर्स में आइए, 7 सेशन कोर्स में आइए, भक्ति वृक्ष में आइए, आप शनिवार शाम के कार्यक्रम में आइए, भागवतम के सुबह के कार्यक्रम में आइए, इस तरह के उसने जो है आपका इंट्रोडक्शन कराया, और फिर आप जो है एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपको लगातार शिक्षा के माध्यम से भगवान को ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, इसका ज्ञान मिलना शुरू हो गया। अब वो आपका टीचर है, आपका भी मन लगता है कि ये मेरे को सारी बातें बड़े अच्छे स्पष्ट तरीके से समझा रहा है। पहले दिन तो मेरे को इंट्रोड्यूस किया था, परंतु अब दूसरा मुझे मिला है जिसने कि मेरे मन की जो भ्रांतियां थी, मेरे मन में जो संदेह थे, मेरे जो शक थे, शुभा थे, डाउट्स थे, उनको क्लियर करना शुरू कर दिया है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। मैं प्रश्न करता हूं तो मुझे गुस्सा नहीं होते मेरे से, मुझे मुस्कुरा के प्रेम पूर्वक मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जिससे मेरे संदेह दूर होते हैं, मेरे डाउट्स दूर होते हैं, और मेरा और आगे ज्ञान प्राप्त करने का मन करता है। वो मुझे बताते हैं कि तुम्हें भगवान को जानना कैसे है, वो मुझे बताते हैं तुम्हें भगवान को पहचानना कैसे है, वो मुझे बताते हैं तुम्हें भगवान को समझना कैसे है, और इन सब के बाद भगवान की सेवा कैसे करनी है, सेवा करने का लाभ क्या है, भगवान को प्राप्त करने का लाभ क्या है, ये हौले हौले सारी बातें मुझे क्लियर होती जाती हैं। तो भाई ये मेरे शिक्षा गुरु, ये मुझे शिक्षा दे रहे हैं, इज गाइडिंग मी कि भगवान के प्रति मेरा क्या संबंध होना चाहिए और उस संबंध को कैसे निभाना चाहिए। वर्तम प्रदर्शक गुरु से उठ के बात आई शिक्षा गुरु के ऊपर। अब शिक्षा गुरु ने एक बात समझाई, देखिए आपके लिए अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो उस प्राप्ति के लिए आपको किसी गुरु के प्रति शरणागत होना पड़ेगा, उससे दीक्षा लेनी पड़ेगी, साधारण भाषा में कहते हैं उससे नाम लेना पड़ेगा। उस नाम लेने के लिए योग्यताएं हैं। वो बोले कि नाम लेने का फायदा क्या है, क्यों मेरा नाम, क्यों नाम ले लूं मैं, लाभ क्या होने वाला, स्वार्थी जीव हो ना, लाभ क्या है। लाभ यह है कि जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसके अंदर तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, तुम जुड़ जाओगे, और फिर गुरु का कार्य है तुमको यहां से लेके भवसागर से पार निकाल के भगवान के धाम पहुंचाना। लूज कनेक्शन था आपका अभी, अब वो परमानेंटली टाइट कनेक्शन हो गया भगवान के साथ। ये कार्य कौन कर रहा है, ये दीक्षा गुरु कर रहा है। तो शिक्षा गुरु आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको ज्ञान देंगे, दीक्षा गुरु के साथ जोड़ देता है। अभी तक तो मेरे मन में यह विचार था कि वो दाढ़ी वाले बाबा थे, उन्होंने कहा था मेरे यहां आ जाना, मैं दीक्षा दे दूंगा, और मुझे कोई नियम तो बताए नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं। तो मैं वहां गया तो बोला 20,000 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सारे मेरे शिष्य हो गए, चलो सारे वो ट्रॉली में आए थे, हवा में उड़ते हुए ट्रॉली में आए थे और बस सारे मेरे शिष्य हो गए। तो मेरा मन आया था कि मैं उनके चरण छू लूं, तो बोले गुरु जी के चरण छूने की फीस 2,00,000 रुपए है, अगर आप इनको प्रणाम करना चाहते हो और इनके चरण स्पर्श करना चाहते हो तो आपको 2,00,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, फिर आपका नंबर आएगा चरण स्पर्श करने के लिए। पर शिक्षा गुरु आपको जब दीक्षा गुरु से मिलाता है तो वो बताता है कि दीक्षा गुरु के गुण क्या होने चाहिए, ये हवाई बात नहीं करता। और अगर आपको जो है दीक्षा लेनी है तो उसके लिए यम क्या है, नियम क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, कायदे क्या है, कानून क्या है, 4 नियमों का पालन करना है, अच्छा जी 16 माला जप करना है, अच्छा जी मैंने कल किया था, आज दीक्षा मिल जाएगी, कल आपने कहा था ना, तो मेरे को पता लगा है, मैं बोर्ड में लिखा हुआ है कि 23 तारीख को दीक्षा होने वाली है, कल मैंने 16 माला जप कर ली थी, 4 नियमों का पालन कर लिया था, आज मेरी दीक्षा करा दो। तो बाबा जी वाली बात नहीं, शिक्षा गुरु के पास हो गया तो बाबा जी वाला खेल नहीं कि ट्रॉली पे आके दीक्षा देके चले जाएंगे। घर में फोन आ गया कि आज मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं, तुम्हारा मन हो तो तुम भी चलो, मैं कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कोई कायदा नहीं कर, उससे क्या फर्क पड़ता है, गुरु मिल जाए चलो, और लोग जाते हैं। लिटरली आई हैव सीन लोगों को फोन आता है, आज दीक्षा होने वाली है, मूड है तो आजा आजा। तो क्या नहीं, शिक्षा गुरु ट्रेन करता है भाई आपको, आपके मूड के अनुसार आपकी जो एक्टिविटीज हैं उनको वॉच करते हुए, उनको समझते हुए आपको ट्रेन करता है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 5 साल तक आप नियमों का पालन करते रहते हो, 3 साल नियमों का पालन करते रहते हो, 1 साल करते रहते हो, फिर वो उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर वो आपको दीक्षा के लिए नाम रिकमेंड होता है। नहीं नहीं अभी आपका ठीक नहीं है, साधना ठीक नहीं, अभी थोड़ा और इम्प्रूव करिए, अगली बार कंसिडर किया जाएगा। मीन्स शिक्षा गुरु का कार्य है कि आपको परफेक्ट बना के दीक्षा गुरु के साथ अटैच करे। कलमश नहीं होना चाहिए, कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, अभी आपके अंदर शुद्धता होनी चाहिए कि यस अब ये जो है जो मेरे टच में है, अब मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इसका नाम कि ये दीक्षा गुरु से दीक्षा लेने के योग्य हो गया है, अर्थात इसने योग्यता प्राप्त कर ली है। वो योग्यता जब प्राप्त हो जाती है, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप दीक्षित होते हो, भगवान के आगे यज्ञ होके आपको भगवान का नाम लगा के, पीछे दास लगा के या दासी लगा के आपको जो है एक गुरु की दीक्षा शिष्यता प्राप्त हो जाती है, होगी। चल भाई अब तो खाली हो गए, अब तो कोई नियम नहीं कानून नहीं, दीक्षा लेनी थी, काम खत्म हो गया, नाम लेना था ना, मिल गया, अब क्या है, अब मैं कौन और गुरु कौन, नहीं। नाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स ऑफ सरेंडर। अभी तो आपने सरेंडर करने की योग्यता प्राप्त करी थी, अब सरेंडर स्टार्ट होगा कि गुरु के प्रति आपका कर्तव्य क्या है। नाउ यू हैव टू प्रूव कि व्हाट काइंड ऑफ शिष्य यू आर, किस आपकी शिष्यता grade 1 की है, grade 2 की है कि grade 3 की है, किस लेवल के आप शिष्य। अब आपको शरणागति तक पहुंचने के लिए जो कार्य हैं, जो प्रोसेस हैं, उनको फॉलो करना शुरू करना है। साधना में जो जप चल रहा है, जो 4 नियम चल रहे हैं, भगवान का भोग चल रहा है, अष्ट विग्रह की सेवा चल रही है, वो बेसिस है। वो ऐसे ही है जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो टाई पहन लेता है, बेल्ट पहन लेता है, यूनिफॉर्म पहन लेता है, जाके प्रेयर में खड़ा हो जाता है। अब पढ़ाई तो इसके बाद होगी, ये तो बेस है, ये तो बेसिक्स हैं, ये तो करने ही करने हैं भाई, वर्दी पहन के जानी ही जानी है, 4 नियम का पालन करना ही करना है, वगैरह वगैरह। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो, अब आपको बातें समझ में आ जाती कि नाउ भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए मुझे शिक्षा गुरु से और दीक्षा गुरु से दोनों से ज्ञान प्राप्त करना है। आप वो कार्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप गुरु के प्रति शरणागत हो या गुरु के प्रति शरणागत नहीं, शरणागति पे चलने का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, गुरु के आदेश का पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, गुरु का सानिध्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसको भी देखने के लिए एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है ये ईमानदार है या बेईमान है। वो गुरु चैत्य गुरु कहलाते हैं, आपके हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है, इज देयर। वो जान जाते हैं कि ये भक्त तो बन गया है, क्या दंभी है कि एक्चुअल भक्त है, दंभी मीन्स दिखावटी भक्त है या एक्चुअल भक्त है, ही नोस, क्योंकि वो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, साक्षी है। हृदय रूपी घोंसले में बैठे हुए आत्मा और परमात्मा दोनों उपस्थित हैं, जहाँ आत्मा कर्मों का फल भोग रहा है, कर्मों के फलों के संग है, और परमात्मा असंग है, अर्थात वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो दृष्टा है। अब आपका कनेक्शन जो है जब हो गया है, अब प्रॉपर लाइन में चल रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बिगनिंग कहां से हुई? एसोसिएशन ऑफ ए डिवोटी। बिगनिंग कहां से हुई? एसोसिएशन भक्त का संग। भक्त के संग ने आपके मन के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत करी। अब श्रद्धा जब जागृत हुई है तो फिर भक्त का संग बढ़ गया। तो शब्द आ रहे हैं यहां पे, आधो श्रद्धा तथा साधु संग। तब आपका जो है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद आपका साधु संग बढ़ गया, अर्थात आप समझ गए कि मुझे कृष्ण भावना भावृत मुक्ति से अब संग करना है, जो मेरे से इस साइंस के अंदर एडवांस्ड है। अब आपका संग आरंभ हो गया। श्रद्धा भी दो प्रकार की है, एक स्वाभाविकी है, एक बलाद उत्पादिका है। स्वाभाविकी का मतलब कि आपको किसी से कहलवाने की, ट्रेनिंग की, ज्ञान की, शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी, आपकी भगवान ने स्वाभाविक रूप से अज्ञान सुकृतियों की वजह से पिछले जन्मों के अनुसार आपकी ऑटोमेटिक भगवान में श्रद्धा डेवलप हो गई। स्वाभाविकी स्वाभाविक है, नथिंग। दूसरी है बलाद उत्पादिका, आपको ट्रेन किया जाता है, आपको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है, तब आपकी भगवान में श्रद्धा डेवलप होती है। तो बलात् मतलब कंपल्सिव मोड में आके आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा डेवलप हुई। अब वो श्रद्धा में बात ये समझ में आई कि मुझे अगर आगे बढ़ना है, मुझे अगर ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे तौर तरीके सीखने हैं, तो मुझे भक्त का संग करना पड़ेगा, उसके बगैर मेरा गुजारा। भक्त का संग किया तो भक्त क्या कहता है? भाई आपको योग्यता प्राप्त करनी है, आपको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो उसके लिए ये कार्य करने हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, अर्थात भजन क्रिया करनी, भगवान का भजन करना है। भजन के अंदर ये 9 अंग हैं, इनको समझिए और इनके ऊपर चलिए, एक एक अंग को समझते जाइए और इसका पालन करते जाइए। परफेक्शन आप एक में भी कर सकते हैं, परफेक्शन 2 में बांट बांट के कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 9 के 9 में कर सकते हैं, परंतु कार्य जो है शुद्ध तरीके से होना चाहिए, उसमें अशुद्धता नहीं आनी चाहिए। आप एक अंगी भक्ति करेंगे, 9 अंगी भक्ति करेंगे, जैसी भी भक्ति करना चाहें आप करिएगा, परंतु उसमें परफेक्शन लेके आनी। ने कहा ठीक है, मैंने भजन क्रिया कर लिया, अब आगे आपको चाहिए अनर्थ निवृत्ति। चौथा स्टेप है अनर्थ निवृत्ति। मेरे जीवन का अर्थ भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, और उस प्रेम प्राप्त करने में जितने अवरोधक हैं वो सब अनर्थ हैं। अर्थ है भगवान का प्रेम, अनर्थ है जिससे भगवान का प्रेम प्राप्त ना हो, अर्थात जो अवरोधक है। अच्छा ये बताइए कि सबसे बड़ा अवरोधक क्या है? भाई प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको भगवान का लगातार निरंतर स्मरण करना है, और सबसे बड़ा अवरोधक यह है भगवान का निरंतर स्मरण ना हो पाना। तो कैसे नहीं हो पाता? कि मेरा मन भटक जाता है, तो मुझे मन को वश में करना है, एक पॉइंट, मन को वश में करने के लिए मेरे को उन चीजों का त्याग करना पड़ेगा जो मन को भटकाती हैं, जिनसे मन भटकता है उनका त्याग करना पड़ेगा। तो नियम क्या बना कि आपको इंटॉक्सिकेंट्स नहीं लेने, ये सब मन को भटकाते हैं। चाय पीते हैं तो मन अलर्ट हो जाता है, नींद खुल जाती है, कॉफी पीते हैं तो नींद खुल जाती है, अर्थात मन भटकने लगता है। तो चाय छोड़नी है, कॉफी छोड़नी है, सिगरेट छोड़नी है, तंबाकू छोड़ना है, शराब छोड़नी है, मांस अंडा मुर्गा मछली मशरूम विनेगर बहुत सारी चीज़ें छोड़ने के लिए बड़ा मुश्किल काम है जी। यहाँ आके अटक गए, कितने साल से आ रहे हो? 2 साल से। कितने साल से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो? 2 साल से। कितने साल से दर्शन कर रहे हो? 2 साल से। सेवा भी करता हूँ थोड़ी थोड़ी। अच्छा, और चाय छोड़ी? चाय नहीं छूटती, सब छूट सकता है, दुनिया छूट सकती है, बस चाय नहीं छूट सकती है। ये बड़ा कठिन काम। तो अनर्थ निवृत्ति कहाँ हुई? अब चौथे स्टेप पे, सीढ़ी पे आप अटके हुए हो, चौथी मंजिल पे आके मामला फ्लैट हो गया। अब प्रभु जी क्या करें, घर में सब लोग प्याज लहसुन खाने वाले हैं, मैं अकेला पड़ गया हूँ, नहीं खाता हूँ तो घर में झगड़े होते हैं, वे खाना ही पड़ता है, बाहर जाता हूँ तो भी खाना ही पड़ता है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल काम है। आप कोई गाइडेंस दो, कोई सजेशन दो। मतलब अनर्थ निवृत्ति के ऊपर अभी नहीं पहुंचे, वहीं अटके हुए हैं। जीवन का अर्थ अर्थात भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो अवरोधक हैं उनको मैं पार नहीं कर पा रहा हूं, उनको क्रॉस नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी लिमिटेशन आ गई। पर अगर मैं अनर्थ निवृत्ति कर लेता हूं, अनर्थों से छुटकारा पा लेता हूं, उस सिचुएशन में आ जाता हूं कि अनर्थों से मेरा छुटकारा हो गया है, मैंने उन्हें ओवरकम कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, उनसे पार पा लिया है, अब क्या होगा? अब मेरी जो श्रद्धा थी अटूट हो जाएगी, अनअलॉयड अनडेविएटेड, तो हो जाएगी निष्ठा। अब मैं निष्ठ हो गया भगवान के अंदर, एक निष्ठ भक्ति विशेषते, मेरी भक्ति के अंदर भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें मेरी निष्ठा। अब निष्ठा हो गई है तो आगे क्या होना चाहिए? कितने स्टेप हो गए जी? 5 हो गए, रुचि। अब मेरा भगवान के प्रति सेवा करने में आकर्षण हो गया है, दर्शन में आकर्षण हो गया है, कीर्तन में आकर्षण हो गया है, श्रवण में आकर्षण हो गया है, अर्च विग्रह की सेवा में आकर्षण हो गया है, भोग लगाने में आकर्षण हो गया है। मतलब हौले हौले मेरी रुचि डेवलप हो रही है। जब रुचि डेवलप हो जाएगी तो अगला स्टेप आएगा आसक्ति। आसक्त हो गया, अब उसके बिना मन नहीं लगता। जब तक ये कार्य ना कर लूं उसके बिना मेरा मन अधूरा अधूरा रहता है। आसक्ति में आगे डिटेल्स हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, समय अभाव है इसलिए कर नहीं पाएंगे। तो आसक्ति के जब प्लेटफॉर्म पे आप आ जाते हो तो आपको भगवान के सिवाय कुछ सूझता नहीं। आसक्ति कैसी होनी चाहिए? कैसी? जैसे मछली की पानी के प्रति, मछली पानी के बिना एक क्षण नहीं रह सकती, तड़पने लगती, ऐसी मुझे भी भगवान के बिना एक क्षण नहीं रहना है, तड़पना आ जाती, तड़पने लगे मन कि अब भगवान की सेवा नहीं हो पा रही, भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, मेरे मन में कुछ खाली खालीपन है, कुछ अधूरापन है, मन चल नहीं रहा है। मतलब इतनी आग में आसक्ति आ गई है कि आपको उनके सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। जब आसक्ति हो जाएगी फिर आएगा भाव, अब भगवान के प्रति आपका भाव आ गया, भगवान की चर्चा आएगी तो आंसू बहने लगेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हाथ पैर कांपने लगेंगे, गला रुंध जाएगा, आंसू बहने लगेंगे, और ज़्यादा आएगी तो मूर्छा आ जाएगी, बेहोश हो जाएंगे, अर्थात आपके अंदर भाव बढ़ते जाएंगे। अब भाव के अंदर क्या है? आपके अंदर भगवान के प्रति संबंध कि मेरा वात्सल्य का संबंध है, कि मेरा सखा का संबंध है, कि मेरा माधुर्य का संबंध है, कि मेरा दास का संबंध है, अलग अलग रस का जो है आप अनुभव करने लगेंगे। जब वो लेवल आ जाएगा तो उसके बाद कृष्ण प्रेम आएगा, उसके बाद भगवान के घर में जाने का रास्ता मिलेगा। तो अभी हम लोग जो है कोई दूसरे स्टेप पे अटका हुआ है, कोई तीसरे पे अटका हुआ है, कोई चौथे पे अटका हुआ है। चौथे से पार आके निष्ठा के लेवल पे आना भी बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि आपको जब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को आप समाप्त नहीं करते, तब तक तो आप ABC भी नहीं, मतलब सीढ़ी नहीं चढ़ते। पहली सीढ़ी पे भी आपने कदम नहीं रखा है। ऊपर की सीढ़ियाँ, नौवीं सीढ़ी तो जाने की बात बहुत बात की है। हम लोग सब कहते हैं मैं बड़ा भारी भक्त हूँ, कभी आत्मचिंतन करके देखें तो पता लग जाएगा मैं कितना भारी भक्त हूँ, कितना वजन है मेरी भक्ति में। कहना आसान है परंतु उसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, अगर उसका मापदंड देखेंगे तो देखेंगे कि अभी हमने तो पहली सीढ़ी पे भी कदम नहीं रखा, अभी तो जीरो लेवल पे चल रहा है। हरे कृष्णा, श्री गोपाल की जय। चिताई गौर प्रेमानंदे।